आप सब इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा रिव्यू दे प्लीज। बैक टू स्टोरी। जैसे ही आस्था ने ये कहा, अरमान उसकी ओर देखकर तिरछा सा मुस्कुराया। उसके पास जाकर बोला, ताकि मैं छिपकली देखने जाऊं और तुम यहां से भाग जाओ। अरमान के ये कहते ही आस्था की आंखें हैरत से फैल गईं। वो सोचने लगी, इस राक्षस को हमारे मन की बात कैसे पता चली? हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि ये कितना बड़ा पिशाच है? ये सारी मन की बातें भी जान लेता है। आस्था फिर से रोने जैसी शक्ल बनाकर खड़ी हो गई। उसे अब कुछ सूझ नहीं रहा था। तभी अरमान ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और बोला, मुझे टाइम बर्बाद करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। ये कहकर वो बाथटब में बैठ गया और आस्था के हाथ में बॉडी वॉश थमा दिया। आस्था ने मन ही मन में कान्हा जी का नाम लिया और सोचने लगी, आस्था आज तो नहीं बच सकती है, फटाफट से इस पिशाच को गंगा स्नान करा और यहां से निकल ले। ये सोचते हुए आस्था ने जल्दी से थोड़ा सा बॉडी वॉश लिया और अरमान की पीठ पर रगड़ने लगी। जैसे ही आस्था के कोमल छोटे छोटे हाथों ने अरमान को छुआ, अरमान का शरीर आग की भट्टी के जैसा तपने लगा। उसका पूरा शरीर आस्था के छूने भर से बेचैन हो उठा था। हालांकि उसने अपनी बेचैनी आस्था को देखने नहीं दी, लेकिन उस वक्त आस्था का स्पर्श उसे अंदर ही अंदर काफी परेशान कर गया था। हालांकि उसने ही आस्था को खुद से नहलाने के लिए कहा था। आस्था अरमान की पीठ पर बॉडी वॉश लगाते हुए सोच रही थी, ऐसा लग रहा है कि हम किसी इंसान को नहीं, किसी बड़ी लोहे की दुकान को छू रहे हैं। कितना ठोस, कितना लोहे जैसा शरीर है इनका। पता नहीं कैसे इतना लोहे वाला शरीर किसी का हो सकता है। वो सोच रही थी, ये खाना कैसे खाते होंगे। आस्था की सुई अरमान के खाने पर अटकी हुई थी। अरमान का खाना आखिरकार जाता कहाँ है? क्योंकि अरमान का पेट तो दिखाई नहीं देता, केवल उसके पेट की जगह कट से चॉकलेट शेप्स जैसे दिखाई देते थे। और अरमान की कमर भी एकदम लोहे के समान कटी पीसी थी। उसकी मस्क्यूलर बॉडी पर आस्था उस वक्त बॉडी वॉश लगा रही थी। उसे छूते हुए वो बार बार ये भी चेक कर रही थी कि क्या ये असली है या फिर ये इंसान किसी लोहे की मशीन की तरह कोई रोबोट है जो लोहे से बना होता है। ये सारी बातें उस वक्त आस्था के दिमाग में चल रही थी। अरमान को छूते हुए उसे किसी तरह की अलग फीलिंग नहीं आई थी, जो फीलिंग उस वक्त अरमान को आ रही थी। अरमान के शरीर का बहुत बुरा हाल हो चुका था। उस वक्त उसका शरीर आस्था को पाने के लिए बेताब हो उठा था। आस्था जब अरमान के डोले शोले बाइसेप्स चेक कर रही थी, तो बार बार टच करके उनके साथ खिलवाड़ सा कर रही थी। अरमान बड़ी ही इंटरेस्ट और लस्ट भरी नजरों से उस वक्त आस्था को देख रहा था। आस्था का इतने करीब होना उसके अंदर तक आग लगा गया था। अनजान आस्था अरमान का एक हाथ संभालकर उसे फटाफट से नहलाने में लगी थी और जल्दी ही उसे नहला भी चुकी थी। वहीं अरमान अपनी फीलिंग कंट्रोल करते हुए आस्था को देख रहा था। अरमान को नहलाने के बाद आस्था एक तरफ साइड में खड़ी हो गई और सर झुकाकर बोली, हमने आपको नहला दिया है, अब हम बाहर जा रहे हैं। ये कहकर आस्था वहां से बाहर जाने के लिए निकलने लगी। जैसे ही आस्था जाने लगी, अरमान अपने इस हसीन ख्वाब से बाहर आया। उसे ऐसा लग रहा था मानो वो एक अलग ही दुनिया में चला गया था। जैसे ही उसे रियलिटी का आभास हुआ और आस्था जाने को हुई, उसने अचानक से आस्था का हाथ पकड़ा और उसे अपने ऊपर खींच लिया। आस्था इस एक्शन के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। वो तो वहां से अरमान को नहलाने के बाद निकलना चाहती थी, लेकिन अरमान ने उसे अपनी ओर खींच लिया था। आस्था पूरी की पूरी अरमान की बाहों में थी। अरमान के इतने करीब होने पर आस्था के पूरे जिस्म में गुदगुदी सी मच गई थी। हालांकि थोड़ी देर पहले वो अरमान को छू रही थी, लेकिन उस वक्त उसने अरमान के शरीर को देखने के चक्कर में फीलिंग्स को इग्नोर किया था। लेकिन अब अरमान के इतने करीब होने पर उसे एक अलग ही तरह की फीलिंग आने लगी थी। अरमान ने एक हाथ से आस्था की कमर को कसकर पकड़ा हुआ था। आस्था थोड़ा सा घबराते हुए बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? हमने आपको नहला तो दिया है, अब क्या रह गया है? अभी भी कुछ रह गया है क्या? ये कहकर आस्था रोने सी शक्ल बनाकर अरमान की ओर देखने लगी। अरमान बोला, हाँ आपने मुझे नहला दिया है, लेकिन आपके नहलाने से मेरी क्या हालत हो गई है? क्या वो देखना नहीं चाहेंगी? जैसे ही अरमान ने इस तरह से कहा, आस्था ना समझी से उसकी ओर देखने लगी और बोली, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो आपकी पट्टी तक नहीं भीगने दी, देखिए बिल्कुल सही सलामत है। फिर हमने क्या किया? आपका क्या नुकसान हुआ हमारी वजह से? आस्था की ये ना समझी वाली बातें सुनकर अरमान मन ही मन में छल्ला उठा और सोचने लगा, क्या ये लड़की वाकई इतनी मासूम है या केवल मासूम होने का दिखावा करती है? मुझे पता ही है कि ये लड़की सिर्फ और सिर्फ यहाँ पैसों के चक्कर में आई है, और जरूर दादाजी ने इसे ढेर सारे पैसे देने का ऑफर किया होगा, इसीलिए यहाँ से जाने के लिए सोच रही होगी। लेकिन अरमान सिंघानिया की जिंदगी में कोई आकर उसके साथ खिलवाड़ करे तो अरमान सिंघानिया उसे इस तरह से जाने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं देगा। मिसेज आस्था अरमान सिंघानिया। अब आस्था की धड़कन, जो किसी वक्त काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी, अरमान उसकी एक एक धड़कने गिन रहा था, फिर आस्था की ओर देखकर बोला, क्या हुआ, इतना क्यों डर रही हो? यही तो तुम चाहती हो ना कि मैं तुम्हारे करीब आऊं, तुम्हें प्यार करूं, ताकि तुम मुझे सेड्यूस करके फिर मुझसे ढेर सारा पैसा निकलवा सको और फिर यहां मेरी जिंदगी से जा सको। ये कहते हुए अरमान ने अपने उल्टे हाथ की उंगलियां आस्था के गालों पर फैलानी शुरू कर दी थीं। आस्था अरमान की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर गुस्से से भर उठी और बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, हमें आपके पास आने का कोई शौक नहीं है, हम ये बात आपको कितनी बार समझा चुके हैं, लेकिन आप बार बार एक ही बात क्यों बोलते हैं? और पैसों का हम क्या करेंगे? क्या जरूरत है हमें पैसों की? हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है हम यहां आपसे पैसे मांगने आए हैं? जैसे ही आस्था ने उसकी आंखों में आंखें डालकर इस तरह से बातें की, अरमान का दिमाग खराब हो चुका था। अरमान उसकी बातों से बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था। फिर अचानक से उसने आस्था को पलटकर अपने नीचे कर लिया था और फिर उसके ऊपर आ गया था। आस्था सिचुएशन में खड़ी होकर अरमान से आर्ग्यूमेंट कर रही थी। अचानक क्या हुआ उसे समझ नहीं आया। आस्था को जब अपनी सिचुएशन समझ में आ गई, तब तो आस्था के गाल शर्म से लाल हो चुके थे। अरमान का लोहे जैसा शरीर उस वक्त बिल्कुल उसके ठीक ऊपर था। आस्था को बड़ी ही शर्म आ रही थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और आंखें बंद किए बोली, मिस्टर राक्षस जी, हमें जाने दीजिए, हमने कुछ नहीं किया है, प्लीज। आस्था को जैसे ही इस बात का रियलाइज हुआ कि डर के मारे उसने अरमान को फिर से राक्षस कह दिया, वो मन में खुद को कोसते हुए बोली, क्या कान्हा जी, आज आपने हमें मरवाने का पूरा प्लान बनाकर रखा है। अरे, हमने आपसे बोला तो है, ठीक होते ही हम अपनी परिक्रमा भी कंप्लीट कर दूंगी, प्लीज। हाँ क्या कान्हा जी, हमें इस सिचुएशन से निकाल दीजिए। फिर आस्था अरमान के सामने जल्दी से अपने आप को करेक्ट करते हुए बोली, वो हमारा कहने का मतलब है कि हम आपको बस ये बताना चाहते हैं, हमने कुछ नहीं किया है और हम बस अभी यहां से जाना चाहते हैं। आस्था की इस तरह की उठपकांग बातें सुनकर अरमान उसकी ओर देखता रहा और अचानक से उसने अपना कंट्रोल खो दिया और आस्था के होठों को बड़ी ही शिद्दत से चूमना शुरू कर दिया। क्योंकि आस्था के इतने करीब आने के बाद उसके मेन हार्मोन्स काफी ज्यादा एक्टिव हो चुके थे और उस वक्त वो आस्था को पाना चाहता था। अरमान को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसने अपने सोचने समझने की शक्ति को खो दिया था और उस वक्त वो आस्था पर पूरी तरह से हावी होना चाहता था।
आस्था को तो सांस लेने तक का मौका भी नहीं मिला था। अरमान तो अब बड़ी बुरी तरह से न केवल आस्था को किस कर रहा था, बल्कि वो उसे किस करते हुए इतना ज्यादा वाइल्ड हो चुका था कि उसने कितने सारे बाइट्स आस्था के लिप्स पर दे दिए थे। आस्था तो वैसे ही इतनी सॉफ्ट और नाजुक सी थी कि अरमान के इस तरह से किस करने पर वो चीख पड़ी, लेकिन उसकी चीख सुनने में अरमान को और भी मजा आ रहा था। अचानक से उसके होठों को छोड़कर वो उसकी खूबसूरत सुराहीदार गर्दन पर टूट पड़ा और उसे चूमने लगा। अब तो आस्था की हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी, उसका दिमाग पूरी तरह से फ्रिज हो चुका था। उसे समझ में नहीं आया कि वो अरमान सिंघानिया को रोके तो रोके कैसे, क्योंकि अरमान तो उस वक्त बड़ी ही इंटेंस नजरों से आस्था को देख रहा था और उसे पूरी तरह से पाना चाहता था। वैसे भी अरमान सिंघानिया ने आज तक अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी लड़की के साथ फिजिकल मूवमेंट शेयर नहीं किए थे, लेकिन आस्था को अपने करीब देखने के बाद अब वो अपने होश खो बैठा था। इस चक्कर में उसने आस्था ने जो कुर्ती पहनी हुई थी उस कुर्ती को फाड़ दिया था। आस्था केवल इनर वेयर में उसके सामने थी, पर वो अरमान आस्था के खूबसूरत जिस्म को देखने के बाद पूरी तरह से मचल उठा था और अब वो बिना देरी किए आस्था के साथ इंटीमेट होना चाहता था। आस्था इस तरह से अपने साथ ज्यादती होते हुए देखकर जोरों से रोने लगी। वो बार बार अरमान से अपने आप से दूर होने के लिए कह रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन अरमान को तो उस वक्त आस्था को पूरी तरह से पाना था। वो उसकी चीखों को, हर चीज को इग्नोर कर रहा था। तभी अचानक आस्था के हाथ अरमान के बालों पर आ गए थे। आस्था ने जोरों से अपनी पूरी ताकत लगाकर अरमान के बालों को पकड़कर खींचा। एक पल को अरमान रुका और जैसे ही उसकी नज़र आस्था के चेहरे पर गई और साथ ही साथ उसने अपने आप को देखा और आस्था के जिस्म को देखा, तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, क्योंकि वो आस्था के साथ ये सब नहीं करना चाहता था। लेकिन आस्था को खुद करीब से देखने के बाद और उसके होठों को किस करने के बाद वो पूरी तरह से वाइल्ड हो चुका था और अपनी सोचने समझने की शक्ति खो बैठा था। इसीलिए उसने आस्था को इस तरह से किस करना शुरू कर दिया था, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह से आस्था को दुख देता या आस्था पर हावी हो जाता, आस्था ने तुरंत उसके बालों को पकड़कर कसकर खींच लिया था। तब जाकर अरमान हटा था। अब आस्था का ध्यान अपनी फटी हुई कुर्ती की ओर गया। आस्था ने तुरंत वो कुर्ती जल्दी से उठाकर अपने सीने से लगा ली थी और फिर उसने रोना शुरू कर दिया था। वहीं अरमान ने एक पल आस्था की ओर देखा और जल्दी ही वो बाथरूम से बाहर निकल गया था, क्योंकि उसे उस वक्त वहां खड़े रहना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था। अरमान बाथरूम से निकलकर फटाफट से अपने कपड़े चेंज करता हुआ सीधा स्टडी रूम में चला गया था, जहां पर देव ऑलरेडी उसका इंतजार कर रहा था, क्योंकि देव उसकी ऑफिस का सारा काम वहीं से संभाल रहा था। लेकिन अरमान के इस तरह से अचानक आ जाने पर देव पूरी तरह से हैरान हो चुका था।